हम सुनेंगे मॉनिटरिंग इन डायबिटीज, अर्थात हमें क्या क्या चेक करना चाहिए, क्या क्या टेस्ट करना चाहिए। अभी तक जो भी लेसन सुनते आ रहे थे, वास्तव में सबसे मुख्य सब्जेक्ट या लेसन यही है, क्योंकि आपको बताया था DIET, ये चार शब्द याद रखिए, चार लेटर्स, डाइट शब्द याद रखिए, डी फॉर डाइट, आई फॉर इंसुलिन और ड्रग्स, एंड ई फॉर एक्सरसाइज एंड एजुकेशन, टी फॉर टेस्ट, टाइमली टेस्ट। इसमें से डी निकाल दिया जाए तो IET का कोई मीनिंग नहीं होता है, अर्थात दवाई अगर ठीक से डाइट नहीं किया, नहीं लिया, तो कोई मतलब नहीं। आई निकाल दो तो भी कोई मतलब नहीं, अर्थात दवाई नहीं खाए तो कुछ भी करते रहो, कुछ मतलब नहीं। अगर ई निकाल दिया तो भी कोई मतलब नहीं, DIET, लेकिन टी निकाल दिया तो DIE, माना तो जो टेस्ट नहीं करता है, कॉम्प्लिकेशंस होके वो अकाल मृत्यु का शिकार हो जाता है। इसलिए देखिए कितना महत्वपूर्ण है, कितना इम्पोर्टेंट है। हम कितना भी अच्छे से अच्छे दवाई क्यों नहीं खाते हो, रोज कितने भी परहेज क्यों नहीं करते हो, कितना भी आप रेगुलर एक्सरसाइज क्यों नहीं करते हो, परंतु आप टेस्ट नहीं करते हैं, आपका शुगर कितना है, आपके कोलेस्ट्रॉल कितना है, आपका ब्लड प्रेशर कितना है, कोई चेकअप नहीं करते हैं, कोई मॉनिटरिंग नहीं करते हैं। मेरे पास बहुत पेशेंट ऐसे आते हैं, 2 साल के 3 साल के बाद कहते हैं डॉक्टर साहब वही दवाई खाते हैं, आप जो लिखे हो ना वही, लेकिन कब टेस्ट किए थे, वो 2 साल पहले जो टेस्ट किया। ये बहुत नुकसानकारक है, आपको ही नुकसान होगा। इसलिए टेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या क्या मॉनिटरिंग हम करें जानना जरूरी है। आपको डेली क्या करना चाहिए, डेली क्या करना चाहिए, आपके पांव का चेकअप करना चाहिए, और कौन करेगा, आप स्वयं ही, खुद ही। पांव का चेकअप इसलिए करना जरूरी है कि पांव में कहीं भी अगर कुछ जरा सा भी कुछ होता है तो दिखाया कैसा कॉम्प्लिकेशंस होता है। कभी कॉर्न हो जाता है तो कभी कॉर्न केप नहीं लगाइए, आजकल कॉर्न केप आता है लगाते हैं, उसमें एसिड होता है, जल गया, घाव हो गया, अल्सर हो गया, तो बहुत नुकसान होगा। कभी भी कॉर्न केप नहीं लगाइए, कॉर्न होगा तो उसको हम डिब्राइड करते हैं, कैसे करते हैं वो हॉस्पिटल कभी आएंगे दिखाएंगे तो बताऊंगा। तो इसलिए डेली पांव का चेकअप करना बहुत जरूरी है। आप जितना बार मिरर में आप अपना फेस देखते हो, उतना बार आप अपना पांव का भी देखना। कई कहते हैं ये तो बॉडी कॉन्शियस नहीं है, तो फेस देखना अगर बॉडी कॉन्शियस नहीं है तो पांव देखना कैसे बॉडी कॉन्शियस है। ये वास्तव में हेल्थ अवेयरनेस है। कई पूछते हैं कि हम कितना खाते हैं, गिनती करेंगे, अरे इतना कैलोरी हो गया, इतना कैलोरी हो, वो बॉडी कॉन्शियस नहीं है। ये बॉडी कॉन्शियस नहीं है, ये हेल्थ अवेयरनेस है। आप कितना खाते गए, कितना खाते गए कुछ पता ही नहीं है, तो यही बॉडी कॉन्शियस है, वो तो टेस्ट के मारे खाते जा रहे हैं। लेकिन आप थोड़े से कॉन्शियस होके अगर आप ले रहे हैं तो वो बॉडी कॉन्शियसनेस नहीं है, वरन वो हेल्थ अवेयरनेस है। आप सचेतन हैं, आप जागरूक हैं। तो देखिए पांव में रोज आप अपने पांव के बीच में, जो दोनों उंगलियों के बीच में जो एरिया होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बीच में ही फंगल इन्फेक्शन शुरू हो जाता है, लेकिन कभी कभी कई अपना पांव तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, इतने मोटे साइज के होते हैं, पांव को टच भी नहीं कर पाते, देख भी नहीं पाते। तो ऐसा अगर है तो कोई एक आईना नीचे रख दीजिए और पांव को ऐसे रख के देखिए आपका नीचे कैसा है, क्या है। एक आईना का सहारा लीजिए, बड़ा ऐसा देखिए दूर से पकड़ के, नहीं तो दूसरा किसी से भी चेक कराइए, लेकिन चेक जरूर कराइएगा। रोज नहाने के बाद अच्छी तरह से पोंछना जरूरी है। पांव का कोई भी हिस्सा गीला नहीं रहना चाहिए, गीला होगा तो इन्फेक्शन होता है। पांव को अच्छी तरह से सुखाना चाहिए, साफ करना चाहिए। और आपको बताया था रात को सोने से पहले अच्छी तरह से पेट्रोलियम जेली, वैसलीन आदि लगा के सोना है अच्छी तरह से। नाखून जब काटते हैं अंदर तक बिल्कुल नहीं काटना है, सीधा सीधा काटना है, थोड़ा सा बड़ा साइज हो तो कोई कोई बात नहीं, अंदर काटने गए और लग गया कहीं तो बहुत मुश्किल होता है, इन्फेक्शन होगा तो सूखेगा नहीं। काटने के बाद वो फाइल होता है, अंदर से बाहर तक फाइल में ऐसे घिसिए ताकि एकदम शार्प नहीं होना चाहिए, कट जाएगा कहीं लग जाएगा तो। जूता कभी भी एकदम टाइट वाला नहीं पहनिए, एकदम लूज भी नहीं एकदम टाइट भी नहीं, कंफर्टेबल जूता। और जूता पहनने से आपको एकदम सॉफ्ट मुलायम ऐसा होना चाहिए, थोड़ा सा महंगा क्यों ना हो एकदम मुलायम। चप्पल भी एकदम मुलायम, आप कोई स्पोर्ट्स शूज लीजिए, रिबॉक कंपनी का लीजिए अच्छा है। और भी कई देखिए, आपको जो भी कंपनी का कोई मतलब नहीं, आप देखिए कितना सॉफ्ट है और सामने जितना ब्रॉड हो सकता है, जितना सामने ब्रॉड हो सकता है। जूता चप्पल के साइज बड़ा हो तो कोई नुकसान नहीं, आपके पांव के साइज से बड़ा होना चाहिए। तो डेली आपके पांव देखना है, कोई कलर तो चेंज नहीं हो रहा है, यहां कोई लाल लाल होके कोई फोड़े कहीं कुछ तो नहीं हो गया है, कहीं कट के अल्सर तो नहीं हो गया है, कहीं कैलोसिटी तो नहीं हो गया है, कहीं गांठे जैसा तो नहीं हो गया है। तो ये सारी चेक करना जरूरी है, आप नहीं चेक करेंगे तो टू लेट आएंगे तो बहुत मुश्किल होगा। आपको हर महीना क्या चेक करना चाहिए, हर महीना तीन चीजें चेक करनी चाहिए, आपको लिख के रखिए तीन चीजें। जो बहुत मोटे हैं उनको एक वेइंग मशीन रखना चाहिए, मोटे नहीं भी हैं तो मैं कहूंगा आपके घर में भले आपको वॉशिंग मशीन नहीं हो, ड्रायर मशीन नहीं हो और भी कोई मशीन नहीं हो, लेकिन वेइंग मशीन एक जरूर रखना है, आपके वजन चेक करने का मशीन एक जरूर रखना है। और एक ही मशीन में अगर चेक करते रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके वजन घट रहा है बढ़ रहा है क्या हो रहा है। लेकिन कभी कभी क्या करते हैं कई भाई बहने, एक मशीन में आज चेक किया फिर दूसरे मशीन में और कहीं चेक किया तो कभी कभी मशीन में अंतर होता है, कहते अरे मेरा वजन तो 3 किलो कम हो गया लेकिन कुछ नहीं होता है। एक ही मशीन में चेक करेंगे तो पता चलेगा। और उसके सामने एक नब होता है, जीरो लेवल किया जाता है, जीरो करके कैलिब्रेट करके ही खड़े होना है, जीरो नहीं है तो फिर गड़बड़ है। तो आप अपना शारीरिक वजन हर महीना चेक करना जरूरी है। जो मोटे हैं मैं तो कहूंगा हर 15 दिन में, हर हफ्ते में चेक करिए, क्योंकि एक महीने के बाद चेक किया देखा 2 किलो बढ़ गया, हाय 2 किलो बढ़ गया। अगर हफ्ते में चेक करेंगे तो पता चलेगा बढ़ रहा है घट रहा है, तो तुरंत अपने आप को चेक करेंगे, ठीक है ना। नहीं तो वेइंग मशीन रखिए, चेक कीजिए आपका बॉडी वेट कितना होना चाहिए, बताता हूं आगे। एक बीपी इंस्ट्रूमेंट अगर रख सकते हैं तो बहुत अच्छा, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक्स कभी कभी धोखा भी देता है। लेकिन रखना, ठीक से बांधना, कैसे मापना होता है, क्या होता है सीख जाएंगे, यूजुअली 99% ठीक दिखाता है। नहीं तो बीपी देखने दिखाने के लिए धक्का खाते रहो, कहीं वेट करते रहो 2 घंटा, ये ठीक नहीं है। और फीस भी, खाली बीपी भी दिखा के आएंगे तो आपसे फीस जो लेना है डॉक्टर ले लेगा। तो इसलिए एक बीपी इंस्ट्रूमेंट एक बार खरीदिए, लेकिन ये बीपी इंस्ट्रूमेंट बांधेंगे जब भी आपके हाथ में, ये जो कोनी होता है जहां ज्वाइंट है एल्बो ज्वाइंट, इससे 2 उंगली ऊपर कम से कम बांधना चाहिए। और उसके जो नाड़े होते हैं जो रबर का है पाइप, ये सामने होना चाहिए, ये पीछे नहीं सामने। और आराम से रिलैक्स होके किसी कुर्सी में बैठिए, आपका कमर सपोर्ट होना चाहिए, हाथ सपोर्ट होना चाहिए, रिलैक्स होके बैठ के फिर टेस्ट कीजिए तो आप रिपोर्ट सही आएगा। तो इसलिए एक घर में एक वेइंग ऐसे बीपी इंस्ट्रूमेंट रखेंगे तो भी अच्छा है, उससे आपका बीपी अगर आप लगभग अंदाजा में आप समझ जाएंगे। डायबिटीज और बीपी ये दोनों ट्विन ब्रदर्स हैं, दोनों ट्विन ब्रदर्स हैं, एक आता है तो दूसरे को ले ही आता है। तो इसलिए आप अगर खाली शुगर चेक कर रहे हैं, बीपी नहीं चेक कर रहे हैं तो धोखे में रहेंगे। और शुगर होता है बीपी होता है तो फिर हार्ट अटैक होना कोई देरी नहीं। तो इसलिए हर महीना आपको बीपी चेक करना जरूरी है। एक चार्ट पेपर लीजिए, हर महीना नोट करिए, लिखते रहिए। कभी भी डॉक्टर के पास आते हैं तो दिखाना, डॉक्टर साहब मेरा ये ब्लड शुगर है, देखो मेरा ये बीपी है, मैं हर महीना चेक करता हूं। तो आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो हर महीना बीपी चेक करना जरूरी है। तीसरा आपको एक ग्लूकोमीटर रखना बहुत जरूरी है साथ में। आप अगर ग्लूकोमीटर रखते हैं, चेक करते हैं, तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूं। अगर ग्लूकोमीटर नहीं है, कुछ भी खाते रहते हो, कुछ भी पीते रहते हो, कभी शुगर डाउन हो गया, कभी अप हो गया, पता ही नहीं चलेगा। और किसी लेबोरेटरी में जाओ, वो भी धक्का खाओ, ज्यादा पैसा भी लगेगा, काहे को दौड़ना है। एक ग्लूकोमीटर रखो साथ में हमेशा, जब भी जरूरत होगा आप टेस्ट कर सकते हो इमरजेंसी में। लेकिन उसको ट्रंक में नहीं रख देना है। कई लोग ट्रैवलिंग करते हैं, आएंगे सब अपना हेल्थ फाइल रिकॉर्डर ग्लूकोमीटर सब अपने घर में, आएंगे डॉक्टर साहब मुझे शुगर है, ऐसा है, दिखाओ तुम्हारा रिकॉर्ड, नहीं छोड़ के आया हो घर में, तो क्या फायदा है? किस लिए ग्लूकोमीटर खरीदे हो? आप उसको कहीं ट्रैवलिंग करते हो, जाते हो तो लेके जाना है ताकि चेक करो। आप मोबाइल खरीदते हो तो घर में रख के कहीं जाते हो क्या? लेके जाते हो ना, जरूरी है ना। इसी प्रकार ग्लूकोमीटर भी एक मोबाइल जैसा ही तो है, छोटा सा, तो हमेशा लेके जाना है, ठीक है। तो तीन चीजें, बी बी बी, बॉडी वेट, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर। ब्लड शुगर भी कितने बार चेक करना चाहिए? महीने में एक बार चेक करना चाहिए, वो भी आपका क्वेश्चन पेपर आया था ना। महीने में एक बार चेक करना चाहिए, वो भी फास्टिंग सवेरे सवेरे करिए, खाली पेट, नाश्ते के बाद कीजिए, दो घंटे में गोली खा के नाश्ता करके नाश्ते के दो घंटे में एग्जैक्टली करिए। फिर लंच के बाद भी ऐसे करिए और डिनर के बाद भी, चार बार करना है, एक प्री मील, तीन बार पोस्ट मील, क्योंकि खाने के बाद ही ज्यादा शुगर बढ़ता है। और हमारा रियल फास्टिंग तो सिर्फ हम जो तीन चार घंटा रात को सो जाते हैं वही फास्टिंग होता है, बाकी सारा दिन तो कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो 24 घंटे में से 4-6 घंटा ही सचमुच फास्टिंग होता है, बाकी सब तो पीपी ही कहेंगे। तो इसलिए तीन बार पीपी करना जरूरी है, एक बार सवेरे सवेरे खाली पेट किया, दूसरा ब्रेकफास्ट के बाद किया, तीसरा लंच के बाद किया, चौथा डिनर के बाद किया। सेम डे में नहीं हो तो आज फास्टिंग कर दिया, कल ब्रेकफास्ट के बाद कर दिया, दो दिन छोड़ के लंच के बाद कर दिया, कभी डिनर के बाद कर दिया। महीने में एक बार ये चार दफा टेस्ट होना चाहिए, तो पता चलेगा कि आपका शुगर सही सलामत है कि नहीं, कंट्रोल है कि नहीं। लोग रैंडम शुगर करके आते हैं, कहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरा शुगर नहीं है, ऐसा है। रैंडम शुगर का कोई महत्व नहीं है, मैं आपको बताता हूं, कोई वैल्यू नहीं है। लोग 24 घंटे में एक बार टेस्ट करते हैं, कहेंगे मेरा शुगर कंट्रोल है, वाह, 24 घंटे में एक बार उसी समय का स्पॉट टेस्ट कर दिया, कंट्रोल कैसे कैसे पता चलेगा? तो इसलिए चार दफा कम से कम टेस्ट करना है। सवेरे खाली पेट, बताइए, सवेरे खाली पेट, ब्रेकफास्ट के बाद, लंच के बाद, डिनर के बाद, तो चार बार आपको टेस्ट करना है हर महीना, और नोट करके रखना है, तो पता चलेगा आपका शुगर ठीक है कि नहीं। हाँ, एग्जैक्टली दो घंटे में, दो घंटे के बाद नहीं, दो घंटे के बाद अगर ढाई घंटे तीन घंटे करेंगे तो शुगर लो दिखाएगा, डेढ़ और दो घंटे के बीच में करना चाहिए, दो घंटे से आगे नहीं, दो घंटे से थोड़ा सा पांच मिनट पहले हो तो चलेगा। तो हर महीना ये तीन चीजें चेक करेंगे, ठीक है, याद रहेगा। हर तीन महीने में क्या चेक करना है? हर तीन महीने में, तीन महीने वाला शुगर एक होता है जिसको A1C टेस्ट कहते हैं, A1C, तीन महीने का शुगर, इसको कहते हैं A1C टेस्ट, HbA1c, ये लेबोरेटरी में होता है। ये टेस्ट से आपका पता चलेगा कि आपका शुगर कंट्रोल है कि नहीं। आप फास्टिंग पीपी करते हैं, कभी कभी आपका ग्लूकोमीटर सही हो ना हो, कैसे रीडिंग आए पता नहीं, लेकिन आप अगर ये करते हैं, ये भी एक्चुअली एक स्टैंडर्ड हॉस्पिटल में करना जरूरी है। कहीं भी करेंगे तो कुछ भी रिपोर्ट दे देंगे, आपसे पैसा ठग लेंगे, उनको लिख देने का क्या तकलीफ है? टेस्ट नहीं भी करेंगे, लिख देंगे रिपोर्ट, आपको दे देंगे। तो सही, उचित, अच्छे हॉस्पिटल, अच्छे रिएजेंट, अच्छा मशीन इक्विपमेंट है तो स्टैंडर्ड रिपोर्ट भी मिलता है। तो हर तीन महीने का शुगर अगर कंट्रोल है तो आप सेफ है। एक हफ्ता में कितने दिन होते हैं? कितने दिन बहन जी, कितने दिन? एक हफ्ता में कितने दिन? तो आपका HbA1c कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए, याद रहेगा? 7% के अंदर, उससे ऊपर गया तो खतरा ही खतरा है, आंखों में, किडनी में, हार्ट में, सब पे असर हो सकता है, इसलिए 7% के अंदर रहना चाहिए। दूसरा एक टेस्ट है, इसको बॉडी कंपोजिशन कहते हैं, कैराडा स्कैन कहते हैं। ये एक्चुअली हर एक हॉस्पिटल में है कि नहीं मैं नहीं बता सकता हूं, हम ग्लोबल हॉस्पिटल में रखे हैं मशीन। इसमें कुछ किया नहीं जाता है, सिर्फ खड़े होके थोड़ा सा ऐसे पकड़ो तो आपके शरीर में कितने परसेंट चर्बी है, बाहर की चर्बी कितना, अंदर की चर्बी कितना, मसल्स कितना, आपके BMI कितना, एज कितना, बहुत सारे फैक्टर्स इससे बताता है। तो हर 3 महीना में करने से आप रियली एक्सरसाइज कर रहे हो कि नहीं, आप खान पान डाइट कर रहे हो कि नहीं, आपका चर्बी कम हुआ कि नहीं, आपका मसल्स बढ़ रहा है कि नहीं, वो सब हम जान लेते हैं। जिसको रियली जो अपना हेल्थ को ठीक रखना चाहते हैं, वजन घटाना चाहते हैं, तो इसमें हम मेजर करते हैं। इसमें BMI दिखाता है, कितने लोगों को BMI पता है? BMI जिनको पता है हाथ उठाइए, BMI बहुत थोड़े लोगों को, जरूरत नहीं जानने का। बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं उसको, बॉडी मास इंडेक्स। आजकल वो BMI से लोग मोटे हैं, ओवरवेट हैं, पतले हैं, अंडरवेट हैं, ये सब बताते हैं, लेकिन वो 100% एक्यूरेट नहीं है। कोई व्यक्ति अगर काइफोस्कोलियोसिस से ऐसा है, पोलियो हो गया है ऐसा है, उसको हाइट तो प्रॉपरली मेजर कर ही नहीं पाएंगे। कोई एकदम बहुत उसको हार्मोनल डिजॉर्डर है, कई प्रकार के सिंड्रोम है, इतना छोटू सा है, गिड्डू सा है, वो भी नहीं पता चलेगा। कोई बहुत जिम खाना जाता है, खूब मसल एक्सरसाइज करता है, मस्कुलर है, उसका BMI ज्यादा दिखेगा, हालांकि उसका चर्बी नहीं है, फिर भी ज्यादा दिखेगा। तो इसलिए BMI को हम इतना ऑथेंटिक नहीं मानते हैं। मैं हमेशा कहता हूं आइडियल बॉडी वेट जानना जरूरी है आपका, वो बताऊंगा आगे। तो इस कैराडा स्कैन से पता चल जाता है आप सचमुच मेहनत कर रहे हो कि नहीं, आपका चर्बी घट रहा है कि नहीं, आपके मसल्स बढ़ रहा है कि नहीं, आपका बॉडी कंपोजिशन ठीक है कि नहीं, हम पता कर लेते हैं। तो 3 महीने में एक बार जो फॉलोअप करते हैं उनका हम चेक करते हैं। चलो आप 3 महीने में माउंट आबू तो नहीं आ सकते हैं, लेकिन 6 महीने में भी आते हैं कि साल में एक बार आते हैं, तो हम बता देंगे बहन जी आप पिछले साल ऐसे थे, इस साल थोड़े पतले हो गए हो, तो बता देंगे हम। तो इसलिए ये हर 3 महीने में चेक करते हैं हम। हर 6 महीने में क्या चेक करना है? हर 6 महीने में 4 चीजें चेक करनी है। एक आपका किडनी का फंक्शन टेस्ट, आपके जो किडनी है, गुर्दे हैं, वो सही सलामत है कि नहीं, चेक करना जरूरी है। उसमें हम पेशाब चेक करते हैं, ब्लड यूरिया चेक करते हैं, सीरम क्रिएटिनिन चेक करते हैं, ये खून में कैसा है, किडनी ठीक काम कर रहा है कि नहीं, यूरिन में प्रोटीन लीक हो रहा है कि नहीं, वो चेक करते हैं। तो किडनी सही सलामत काम कर रहा है कि नहीं हम चेक करते हैं। तो पता चलता है डायबिटीज के कारण आपका किडनी पर असर तो नहीं हो रहा है। अगर आप चेक नहीं किया 2-4 साल तक, एक दिन किडनी फेल होके आते हैं, उस समय हम कुछ कर नहीं सकते हैं। अगर 6 महीने में एक बार चेक कर लिया, आप मस्त रहिए, बढ़िया, मेरा कुछ नहीं है। 6 महीने में नहीं कर सकते हैं तो कम से कम साल में एक बार करो। जिसका हाई ब्लड प्रेशर है, मैं कहूंगा 6 महीने में एक बार करना चाहिए। और दूसरा आपका लीवर फंक्शन टेस्ट करना चाहिए। जो लीवर है उसमें भी जो एंजाइम्स होते हैं, SGOT, SGPT आदि आदि, ये सब हम टेस्ट करते हैं। लीवर ठीक काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है कि नहीं, वो देखते हैं। जो मोटे होते हैं, जैसे प्रश्न आया था फैटी लीवर, हम कहते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी चेंजेस। कई जब दारू पीते हैं लीवर खराब होता है, ये तो सबको पता है। जो अल्कोहल लेता है उसका लीवर पर असर हो जाता है, लेकिन कभी कभी कोई दारू नहीं पीते भी उसका लीवर खराब हो जाता है। नॉन अल्कोहलिक स्टियाटो हिपाटाइटिस कहते हैं, NASH, नेस कहते हैं, नेस। तो दारू बिना पिए भी लीवर खराब होता है। जो मोटे होते हैं यूजुअली, जो डायबिटीज है, उनका भी लीवर में असर होता है। कई दवाई होती है, वो दवाई का असर भी लीवर पर पड़ता है। तो इसलिए हम चेक करते हैं 6 महीने में कहीं लीवर पर असर तो नहीं हो रहा है। और लीवर पर कुछ असर हो गया, तकलीफ है, तो आप थोड़ी सी भी तली हुई चीज कुछ खाएं, गैस 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 हमेशा कंप्लेन करते रहेंगे, मेरा तो हजम ही नहीं होता है, पेट फूला हुआ रहता है, खाना नीचे ही नहीं जाता है, मुझे बेचैन ही लगता है, ये सब लीवर में प्रॉब्लम हो सकता है। आपको भूख ही नहीं लग रही है तो लीवर में प्रॉब्लम हो सकता है। तो हर 6 महीने में एक बार लीवर का फंक्शन टेस्ट कर लेना चाहिए। और क्या चेक करना चाहिए? दांतों का चेक करना चाहिए। दांत हर 6 महीने में आपको डेंटिस्ट के पास जाके चेक कराना है, दांत में कुछ प्रॉब्लम हो ना हो। जिस दिन आपके दांत में प्रॉब्लम हो रहा है समझ गए तो उस समझ लो बहुत अंदर तक कुछ चला गया है, इन्फेक्शन हो और कुछ प्रॉब्लम हो। तो इसलिए हर 6 महीने में डेंटल चेकअप करना जरूरी है। करेंगे सभी दांत का चेकअप? कोई अच्छे डॉक्टर से जाके चेक करा लेना, सही सलामत रहेंगे। दांत में अगर इन्फेक्शन हो गया ना, शुगर कंट्रोल नहीं होता है और बहुत तकलीफ से ठीक होता है, तो इसलिए दांत को चेक कराना जरूरी है। और क्या चेक करना है? आपके पांव, पांव तो आप खुद चेक करते हो, लेकिन हम चेक करेंगे और आप चेक करेंगे में बहुत अंतर है। तो हम आपके पांव में क्या चेक करना होता है क्या नहीं हम देखते हैं। हमारे पास स्पेशल मशीन भी है, उसको बायोथेसियोमेट्री कहते हैं। हमारे पास डॉपलर की मशीन भी है, आपके खून की सप्लाई ठीक हो रहा है कि नहीं, आपके सेंसेशन ठीक हो रहा है कि नहीं, सब चेक करने के लिए जो मशीन है उसमें 6 महीने में एक बार चेक कर लेते हैं। अगर जरा सा स्टार्ट हो रहा है, दवाई ले लिया ठीक हो जाएगा, बहुत अगर नसों पर असर हो गया, नर्व्स पर, स्नायु पर असर हो गया तो बहुत तकलीफ होता है, बिल्कुल सालों साल ठीक नहीं होता है, रात भर सो नहीं पाते हैं, ऐसी तकलीफ होती है। इसलिए 6 महीने में एक बार चेक कर लो, एकदम बिगिनिंग में पता चल गया, ट्रीटमेंट कर लिया, ठीक हो गया, नहीं चेक किया, लेट कर दिया, आपको ही रोना पड़ेगा। तो इसलिए 6 महीने में एक बार चेक कर लेना चाहिए। मैं इसलिए हमेशा कहता हूं जो भी भाई बहने हमारे ग्लोबल हॉस्पिटल में आते हैं उनको कंप्लीट चेकअप करके फिर कहता हूं 6 महीने में और एक बार आओ। 6 महीने में 4-5 दिन आके रह के अपना गाड़ी की सर्विसिंग करके फिर आओ, दौड़ाते रहो। अगर 6 महीने में नहीं होता है तो कम से कम साल में एक बार आके 365 दिन में से 5 दिन स्व सेवा करनी है, 360 दिन विश्व सेवा करते रहो, जितना करना है करो, लेकिन 5 दिन इस गाड़ी को सर्विसिंग करना है। इसको ठीक से हॉस्पिटल में रख के पूरी चेकिंग करके पूरा ट्रीटमेंट करके पूरा ठीक होके फिट होके फिर जाओ। जैसे हमारी दादी जानकी कभी बीमार होती है तो क्या कहती जानते हैं? कहते मैं मेरी गाड़ी को हॉस्पिटल में गैरेज में दाखिल कर दिया हूं, मैं ड्राइवर मुक्त हूं, अभी फ्री हूं। तो ये शरीर रूपी गाड़ी को भी सर्विसिंग करने की आवश्यकता है, चेकिंग कराने की आवश्यकता है। हर साल में क्या चेक करने हैं? हर साल एक बार पूरा कंप्लीट चेकअप, पूरा कंप्लीट चेकअप। आप अपना सिर से लेके एड़ी तक आपके आंखों के पर्दे की चेकअप कराइए। अगर किसी का आंखों पर ऑलरेडी असर हो चुका है तो आपके आई के डॉक्टर जैसे ही सलाह देते हैं ऐसे ही करना है। वो कहेंगे हर 3 महीने में करो, हर 6 महीने में करो, तो करना पड़ेगा, हर महीना करो, करना पड़ेगा, नहीं तो पूरा अंधे हो जाते हैं लोग। तो साल में एक बार कम से कम आंखों का चेक कर लेंगे तो आपके पर्दे पर असर हो रहा है कि नहीं, कहां हो रहा है, तो शुरू से पता चलेगा तो उसका इलाज करके ठीक कर देंगे। और क्या करने हैं? आपके दांतों का चेकअप, थायराइड का चेकअप, ECG करके हार्ट का चेकअप, लीवर का चेकअप, किडनी का चेकअप, सारे अंदर कोलेस्ट्रॉल और बाकी चर्बियों का चेकअप, पेशाब का चेकअप, पांव का चेकअप, सारी चेकअप, पूरा सारा बॉडी का चेकअप एक बार करना जरूरी है। और उसका फाइल में लिखते रहेंगे, हम रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं तो पता चलेगा पिछला साल क्या था, ये साल क्या है, अच्छा हो रहा है कि डिटोरिएट कर रहा है, उसी अनुसार हम फिर दवाई देते हैं। तो एनुअली एक बार कंप्लीट चेकअप करने की आवश्यकता है। जो नहीं चेकअप करते हैं वही धोखे में रह जाते हैं, फिर कॉम्प्लिकेशन से लेके आते हैं, रोते रहते हैं जिंदगी भर। करेंगे एनुअली चेकअप एक बार? करेंगे? बहुत अच्छा भाई, लोग कोई नहीं हाथ उठाया। जो कहते हैं साल में एक बार जरूर चेक करेंगे, हाथ उठाइए। बहुत अच्छा, बधाई हो। देखो चेक करने से थोड़ा खर्चा होगा परंतु आप 2-4 हजार, हमारे हॉस्पिटल में कंप्लीट चेकअप कराने के लिए 1,500 रुपया के अंदर हो जाता है, शायद 1,000-1,500 रुपया। साल में एक बार 1,000-1,500 रुपया खर्चा करके सारा जीवन सही सलामत रहना चाहते हैं कि बिना चेकअप किए एक दिन अंधे होके लाखों रुपया, एक दिन किडनी खराब करके लाखों रुपया खर्च करना चाहते हैं? क्या पसंद है सोच लीजिए। तो इसलिए साल में कम से कम एक बार कंप्लीट चेकअप होना चाहिए। आपके टारगेट्स क्या क्या है आप याद रखिए, अगर नहीं याद रहता है कोई बात नहीं, फिर भी अगर याद कर सकते हैं तो अच्छा है। आपके फास्टिंग शुगर या प्री मील शुगर, अर्थात कभी भी खाने से पहले चेक करते हो, सवेरे ब्रेकफास्ट से पहले किया, लंच से पहले किया, डिनर से पहले किया, उसको प्री मील शुगर कहते हैं, खाने से पहले। ये कितना होना चाहिए? 80 to 100, 100 के आसपास होना चाहिए, 100 याद रखिए। प्री मील कितना होना चाहिए? 100। प्री मील कितना होना चाहिए भाई साहब? आइए तो इधर, आपके पास 100 रुपये का नोट है, दीजिए, एक लौटा दूंगा, चिंता नहीं कीजिए, लौटा दूंगा। अच्छा 50 रुपये नोट है, अच्छा दे दूंगा, बैठिए बैठिए बैठिए। ये कितना है? 100 रुपीज। तो आपका फास्टिंग शुगर कितना होना चाहिए? 100, याद रहेगा 100। फास्टिंग शुगर कितना? कभी भी खाना खाने से पहले चेक करते हैं तो कितना? ये दोनों मिला के कितना हुआ? अगर कभी भी पीपी शुगर करते हैं खाने के बाद, नाश्ते के बाद, लंच के बाद, डिनर के बाद कभी भी करते हैं तो कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? पक्का याद रहेगा? लीजिए भाई साहब लीजिए, देखिए लौटा रहा हूं मैं, याद रहेगा सभी को, माताओं को? तो खाली पेट 100, और कभी भी खाने के बाद, लंच ब्रेकफास्ट के बाद, लंच के बाद, डिनर के बाद 150, 100 और 150, उसमें 10-20 आगे पीछे हो तो चलेगा। जैसे खाली पेट अगर 80 से 120 तक होता है चलेगा, 80 से 120, 10-20 आगे पीछे। ऐसे ही लंच के बाद, डिनर के बाद या ब्रेकफास्ट के बाद करते हैं तो 150 बताया, लेकिन 10-20 कम हो गया, 10-20 ज्यादा हो गया, चलेगा कोई बात नहीं। कभी भी आपका ब्लड शुगर सारे दिन में 180 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। 180 से ऊपर गया तो किडनी का कैपेसिटी 180 तक है, उससे ज्यादा गया तो शुगर छलकने लगेगा, फिर पिसाब में बहने लगेगा, तो इसलिए यूरिन में शुगर आने लगता है। तो सारे दिन में 180 से कभी भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। 180 से ज्यादा गया तो फिर पिसाब में आएगा, कॉम्प्लिकेशन होना शुरू हो जाएगा। 200 से ऊपर तो कभी नहीं होना चाहिए, अगर 200 से ऊपर गया सब प्रकार का कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाता है, सब प्रकार का, बॉडी में, आंखों में, नस में, गुर्दे में, हार्ट में। 200 से ऊपर गया शुगर कभी ना कभी सारे दिन में बहुत ही प्रॉब्लम होगा, इसलिए कभी भी 200 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। क्लियर, समझ में आया? पक्का? ठीक है। और देखिए HbA1c आपको बताया, 3 महीने वाला शुगर कितना बताया था? 3 महीने वाला शुगर 7, हफ्ते में कितने दिन? तो 7% से कम है तो बहुत अच्छा, 7% से ऊपर गया तो खतरा ही खतरा है, इसलिए हमेशा याद रखिए 7% से ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल, जो चर्बी है आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल, वो कितना होना चाहिए? 200 से नीचे, 200 से कम। 200 से कम है तो आपको नुकसान नहीं होगा, अगर टोटल कोलेस्ट्रॉल 200 से ऊपर गया बहुत ही नुकसान करेगा। इस प्रकार ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड 150 से कम होना चाहिए, ट्राइग्लिसराइड ही हार्ट अटैक कराता है, ट्राइग्लिसराइड कम होना बहुत अच्छा है। ट्राइग्लिसराइड अगर ठीक नहीं हुआ तो ही हार्ट में प्रॉब्लम होता है। जिसका शुगर कंट्रोल नहीं है उसका ही ट्राइग्लिसराइड ज्यादा होता है। ट्राइग्लिसराइड 150 से कम है तो आपको हार्ट के प्रॉब्लम कभी भी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। ठीक है। इस प्रकार आपका HDL जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, ये हमेशा 45 से ऊपर होना चाहिए, 50 से ऊपर तो और अच्छा है। माताओं का 50 से ऊपर होना चाहिए, भाइयों का 40 से ऊपर होना चाहिए, इसलिए मैं 40 और 50 दोनों का बीच का ले लिया, 45 से ऊपर हो जाए ठीक है। और जो बुरे कोलेस्ट्रॉल है, जो खराब कोलेस्ट्रॉल है, सबसे गंदा कोलेस्ट्रॉल है, ये कितना होना चाहिए? जो गंदा कोलेस्ट्रॉल है वो 100 से कम होना चाहिए, क्योंकि वही हार्ट अटैक कराता है। तो 100 से कम होगा तो कभी भी आपको हार्ट में प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन जिसका हार्ट में ऑलरेडी प्रॉब्लम है, ऑलरेडी हार्ट पर असर हो गया है, तो वो 70 से कम होना चाहिए, 100 नहीं, कितना? 70 से कम होना चाहिए, तो LDL 70 से कम होना चाहिए और VLDL ये तो 30 से भी कम होना चाहिए। आपका ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए? ब्लड प्रेशर 130/80, 130 और 80 के बीच में होना चाहिए, इसके नीचे होना चाहिए। 130 और 80 से ज्यादा जाता है तो फिर हार्ट में, आंखों पर, किडनी पर, सब पर असर हो सकता है। इसलिए हमेशा याद रखिए ब्लड प्रेशर भी कम हो, जितना ब्लड प्रेशर कम होगा आपके लिए उतना वरदान है। आपके आंखें, आपके हार्ट, आपके किडनी सही सलामत रहेंगे। आपको खाली चक्कर नहीं आना चाहिए, बस बहुत लो हो जाता है तो चक्कर रह जाता है। तो इसलिए कई कहते हैं उम्र के अनुसार ब्लड प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, नहीं, वो थ्योरी पहले जमाने में बताते थे लेकिन आजकल नहीं है। 130/80 से कम होना चाहिए। ये सारी चीजें आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप याद भी नहीं रख पाएंगे, लेकिन एक याद रखिए, आपके कमर कितना होना चाहिए, इससे पता चलता है कि आप मोटे हो कि पतले हो कि दुबले हो कैसे हैं। भाइयों के कमर 90 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए, बहनों के कमर 80 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए, सेंटीमीटर में। लेकिन वो कमर कहां मापे वो इंपॉर्टेंट है, कहां मापे कमर, कहां मापना चाहिए, इसमें देख लीजिए। आपके देखिए, एक होता है आपके ये कमर की हड्डी, आप देखना ऐसे करेंगे, खड़े होते हैं ऐसे करते हैं तो ये हड्डी होता है। ये हड्डी के जस्ट थोड़ा सा ऊपर जाइए, ये पसली की हड्डी मिलेगा आपको, यहाँ पसली की हड्डी। तो ये दोनों हड्डी के बीच में होना चाहिए, ये दोनों के बीच में अगर फीता लेके मापते हैं तो उसको वेस्ट लाइन कहा जाता है। एक होता है आपके ये पसली जो रीब की हड्डी है, ये पसली के और ये आपके कमर, ये दोनों के बीच में लेना चाहिए, तो आपको उसको ही वेस्ट लाइन कहा जाता है। तो कितना होना चाहिए बताया, कितना होना चाहिए बहनों का? 80 सेंटीमीटर से कम, 80 नहीं, 80 सेंटीमीटर से कम। और भाइयों का कितना बताया? 90 सेंटीमीटर से कम। कभी चेक कीजिए कैसा है। कहते हैं द ग्रेटर द वेस्ट लाइन द शॉर्टर द लाइफ, जितना आपके ये बेल्ट जितना लंबा है, द लॉन्गर द बेल्ट द शॉर्टर द लाइफ, जिसका बेल्ट जितना लंबा है उसका जीवन उतना ही छोटा है। तो पेट मोटा होना, पेट बड़ा होना ये बहुत नुकसान कारक है, क्योंकि इसके अंदर ही वो चर्बी होते हैं जो विसरल फैट कहते हैं, अंदर की चर्बी वो बड़ा खतरा है। एक होता है बाहर की चर्बी जो बाहर से है, इसको सबक्यूटेनियस फैट कहते हैं, वो इतना खतरा नहीं है, लेकिन अंदर की जो ऑर्गन्स में चर्बी होते हैं ये बहुत ही नुकसान कारक है। वो अंदर की चर्बी ही सारी बीमारियों का जड़ है। और हमारे भारतवर्ष में आप देखना, हाथ पांव तो ऐसे दुबले पतले छोटे छोटे होंगे, लेकिन पेट देखो तो इतना बड़ा। विदेश में ऐसा नहीं होता है, विदेश में सब मोटे, सारा शरीर मोटा होता है, लेकिन हमारे भारतवर्ष में देखो तो पेट सबसे ज्यादा, सेंट्रल ओबेसिटी कहते हैं, इसके कारण ही सारी बीमारियां हो रही है। इसलिए आपके कमर लाइन हमेशा चेक करना जरूरी है। और आपको एक बात आश्चर्य लगेगा कि आप कितना भी एक्सरसाइज करो, कितना भी, आपके अंदर की चर्बी कभी नहीं पिघलेगा। आप दिन रात 24 घंटा कपालभाति करते रहो, नहीं पिघलेगा, नहीं पिघलेगा, नहीं पिघलेगा, ये बाहर की चर्बी पिघल सकता है। अगर आपको अंदर की चर्बी को पिघलना है तो इसका साधन है तेल घी कम करो, जितना कम हो सके घर में, तेल घी बिल्कुल ना के बराबर बिल्कुल, तो ही अंदर की वो चर्बी पिघल के निकलेगा। अंदर की चर्बी को मैं हमेशा ब्लैक मनी कहता हूं, जैसे जो जितना ब्लैक मनी स्टोर करके रखता है क्या होगा, कभी भी रेड हो सकता है, कभी भी रेड हो सकता है। तो इसलिए ब्लैक मनी ज्यादा नहीं रखना है, अंदर की चर्बी बड़ा नुकसान कारक है। आपके वजन कितना होना चाहिए भाइयों के लिए सेंटीमीटर में, अगर आपका हाइट मेजरमेंट करते हैं उससे 100 माइनस कर दीजिए। जैसे आपका हाइट 170 सेंटीमीटर है, 170, तो 100 माइनस कर दिया तो कितना हुआ, 70, तो आपका बॉडी वेट 70 किलो होना चाहिए। मेरा हाइट 180 सेंटीमीटर है, तो उसमें अगर 100 माइनस कर दिया तो कितना रहा, तो मेरा बॉडी वेट 80 किलो होना चाहिए। तो इसको कहते हैं आइडियल बॉडी वेट, आइडियल बॉडी वेट। बहनों के लिए 105 माइनस करते हैं, जितना हाइट सेंटीमीटर में है उससे 105 माइनस करते हैं। जैसे आपका हाइट 160 सेंटीमीटर है, उसमें अगर 105 माइनस कर दिया कितना रहा, कितना रहा 55, तो आपका वेट 55 किलो होना चाहिए। परंतु चलो आपको 5 किलो रिलैक्सेशन दे देते हैं, आपको रिलैक्सेशन दे देते हैं, इसलिए 100 याद रखिए, हाइट इन सेंटीमीटर माइनस 100, इतना याद रखिए, कम से कम इतना होना चाहिए। उससे ज्यादा होगा तो ओवरवेट कहेंगे, ओबेसिटी कहेंगे, और मोटापा ही सारी बीमारियों का जड़ है, कारण है। आपका ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, कितना बताया 130/80, ठीक है। आपका फास्टिंग शुगर कितना होना चाहिए, याद रहेगा पक्का। आपका पीपी शुगर कितना होना चाहिए, पक्का याद रहेगा। आपको जो भी खाने पीने के टिप्स बताया गया खूब एंजॉय कीजिए, मना नहीं है, आप खूब खाइए लेकिन लिमिट के अंदर। और जो जो चीजें, कौन सा गो फूड है, कौन सा थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड फूड है, कौन सा स्टॉप फूड है, सोच समझ के खाना है। जैसे ग्रीन सिग्नल देखते हो कहीं तो चल पड़ो, लेकिन थोड़ा येलो देखते हो तो इधर उधर देख के चलना होता है। स्टॉप है तो कभी कभी क्या होता है, ट्रैफिक में कोई पुलिस नहीं होता है, कोई सवेरे सवेरे का टाइम, भले रेड लाइट है, चल पड़ो। तो ऐसे ही कई देखते हैं, कोई मुझे देख तो नहीं रहा है, खा लिए फटाफट 3-4-6 पकौड़ा, 4-5 गुलाब जामुन, ऐसे करेंगे तो आपको ही नुकसान होगा। विदेश में तो कैमरा रहता है, कौन ट्रैफिक रूल ब्रेक किया वो कैमरा में रिकॉर्डेड होकर रहता है, घर में सीधा आ जाता है इंटीमेशन। तो इस प्रकार कोई देखे या न देखे, देख रहा है, तो इसलिए गड़बड़ करोगे तो आपको आपको ही तकलीफ होगा, किसी को तकलीफ नहीं होगा। इसलिए कहां गो करना है, कहां स्लो करना है, कहां रोक के सोच समझ करके, सोच के लेना है, आपको अभी पता है, तो एंजॉय योर फ्रूट। और रोज एक्सरसाइज करना है, ठीक है। सबसे सस्ती दवाई एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज जैसे सस्ती दवाई और कोई नहीं है। रोज अगर एक्सरसाइज करेंगे आप सदा स्वस्थ रहेंगे। आप ताली बजाते हैं तो ये हाथ में ना क्रैक्स हो जाते हैं, एकदम ड्राई हो जाता है। थोड़ा सा तेल लेके आप हाथ मसल दीजिए, हाथ सही हो जाएगा। कई भाई बहने आके मुझे दिखा रहे थे, बोले कि हमारा लाल लाल हो गया, काला काला हो गया। जोर से मारेंगे तो काला हो जाएगा ना, आपकी चमड़ी वो, आप एज हो गया है, आपकी स्किन थिन हो गया है, जोर से मारेंगे तो एकदम ब्लीडिंग हो सकता है, प्रॉब्लम होगा। इतना बहुत जोर से नहीं, धीरे धीरे ही, धीरे धीरे थोड़ा सा तेल देके हाथ ऐसे मसल देंगे तो ड्राइनेस खत्म हो जाएगा, वैसलीन लगा देंगे तो ठीक हो जाएगा। बहुत जोर से भी नहीं मारना, बहुत धीरे धीरे ऐसे ऐसे भी नहीं करना है, ऐसे ऐसे करेंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा मीडियम थपकी लगाना जरूरी है, ठीक है। तो एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग, वॉकिंग ये डेली करना जरूरी है। रूहानी यात्रा का सीढ़ी कौन कौन वहां से लिए, रूहानी यात्रा, अच्छा बहुत अच्छा। देखो सीजन में हमारे वहां मिलता है शांतिवन में, यहां भी काउंटर में बताएंगे तो आपके लिए वो सीढ़ी मंगा देंगे। उसमें देखो बहुत मेहनत करके वो सीढ़ी बनाया, आधा घंटा चलने के लिए खास, बाबा का नाम लेते हुए चलते रहेंगे चलते रहेंगे। तो पहले 5 मिनट 10 मिनट चलो भले, लेकिन आपको चलते समय मजा आ रहा है वो गीत सुनते सुनते, मेरा बाबा सुन के सुन दे। तो देखो कितना सुंदर ट्यून में बनाया हुआ है, एक बहन कितनी मेहनत से। तो अगर यहां बन जाएगी तो आप रिकॉर्ड करके दे सकते हैं तो बहुत अच्छा, आप बताइए कल तक, आप शाम तक रात तक दे सकते हैं। तो रूहानी यात्रा का सीडी सबके पास हो, मोबाइल में लोड कर दो, कान में सुनते हुए या ऐसे भी गीत बजा के मोबाइल चलो सवेरे सवेरे, बहुत अच्छा। आप जिस इलाका में रहते हो, माहौल में रहते हो, एक ग्रुप बनाइए, प्रभात फेरी कीजिए, सबको जगाइए, बहुत अच्छा। तो सवेरे सवेरे आधा घंटा बाबा का गीत बजाएंगे, और उसमें ऐसे ऐसे शब्द है कि सबके लिए है, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई भी हो, वहां सब प्रकार का नाम है, अल्लाह भी है, गॉड भी है, ईश्वर भी है, ऐसा सब नाम है उसमें, तो सब धर्म वालों के लिए है। तो इसलिए सवेरे सवेरे रूहानी यात्रा कीजिए, थोड़ा सा स्ट्रेच अप कीजिए, थोड़ा सा थपकी लगाइए घोड़ा को, देखो फिर सारा दिन कैसे मस्त दौड़ते रहेंगे। और आप दवाइयां कभी खाना चुके नहीं, टाइम पर ही खाइए, राइट टाइम पर दवाई खाना जरूरी है। कई भाई बहने क्या करते हैं, खाने से पहले भूल जाएंगे, कहते डॉक्टर साहब भूल गया ना, अभी खाने के बाद खा लेते हैं, नहीं तो सवेरे नाश्ते में भूल गया था ना, अभी लंच के पहले खा लेते हैं। नहीं, एक बार भी अगर दवाई नहीं लेते हैं शुगर एकदम बढ़ जाता है, तो इसलिए ऐसा नहीं करना है। ब्लड प्रेशर की मेडिसिन सवेरे सवेरे अर्ली मॉर्निंग लेना है। जितनों को भी हार्ट अटैक होता है अर्ली मॉर्निंग होता है, इसलिए ब्लड प्रेशर भी शूट करता है तो शुगर भी शूट करता है। सवेरे उठते ही ब्लड प्रेशर लीजिए, खाली पेट ब्लड प्रेशर की दवाई ले सकते हैं। तो सवेरे सवेरे लेना है, जो टाइम जैसे बताया जाता है वो खाना जरूरी है, नहीं खाएंगे तो आपको ही नुकसान होगा। अगर इंसुलिन भी लेना पड़ता है, कहीं ट्रैवलिंग करते हैं कुछ करते हैं, उसमें शर्म की क्या बात है, ले लीजिए, कोई बात नहीं, दो मिनट आप नहीं तो टॉयलेट में जाके ले लीजिए, आपको इतने शर्म आता है तो, लेकिन लेना जरूरी है, नहीं लेंगे तो आपको ही नुकसान होगा, मैं आपको बता रहा हूं। और आप जो भी टेस्ट करते हो उसका चार्ट मेंटेन कीजिए, आप उसको लिख के रखिए, कभी भी डॉक्टर के पास आते हैं तो चेक कराइए। आपका पीरियडिक चेकअप करना बहुत जरूरी है, समय अनुसार हर महीना अगर डॉक्टर के साथ आप अपॉइंटमेंट लेके चेक कराते हैं तो बहुत अच्छा। लेकिन आपके कंसल्टेंट कैसे हैं, निस्वार्थी हैं या मतलबी हैं कि कैसे हैं, मैं तो नहीं जानता हूं, लेकिन हर महीना चेक करना बहुत जरूरी है, अच्छा है, आपको कभी भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। और कोई भी आपको तकलीफ होता है, कोई प्रकार के सिम्टम्स होते हैं, कुछ होते हैं, तो जरूर डॉक्टर को बताना है, नहीं बताएंगे तो आपको कॉम्प्लिकेशंस होगा, उस समय फिर कुछ नहीं कर सकेंगे। आपके सारे डॉक्यूमेंट, सारे फाइल्स अच्छी तरह से संभाल के रखिए, डेट वाइज उसको रखिए, जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं वो सारा दिखाने की आवश्यकता है। मेरे पास पेशेंट आएंगे, कहते हैं कहाँ गया आपका जो पिछले विजिट में लिख के दिया था दवाई, कहाँ गया? कहते डॉक्टर साहब हमारी डगी खा गया। नहीं तो कहते हैं हमारी घर धुलाई किया ना, ये सफाई किया, कहाँ गुम हो गया पता नहीं। आप कभी ट्रैवलिंग करते हैं तो टिकट छोड़ के जाते हो, टीटी को कहते हो क्या कि हमारे डॉगी खा गया, मेरा टिकट तो लिया था टीटी साहब, डॉगी खा गया, कहते हैं ऐसा? कोई कोर्ट कचहरी में जाते हैं तो सब कुछ डॉक्यूमेंट लेके जाते हैं ना? नहीं। तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो ये भी मैनर्स होता है, आपके पिछला टेस्ट पेपर, जो भी दवाइयां हैं, जो भी सब कुछ लेके जाना चाहिए, डॉक्यूमेंट दिखाना चाहिए। हर एक को एक हेल्थ फाइल होना चाहिए, एक हेल्थ फाइल बना के उसमें सब कुछ रखो, दवाइयां भी संभाल के रखो, जब भी डॉक्टर के पास जाते हो ये सब कुछ लेके जाके दिखाना जरूरी है। हमें दिखाओगे तो ही तो पता चलेगा। मैं जब पूछता हूँ बहन जी भाई जी क्या गोली खाते हो, तो डॉक्टर साहब वो जो हरी वाली गोली है ना, वो जो पीली वाली है, पीली वाली जो पीली इतनी बड़ी जो पीली वाली, कौन सी हरी वाली पीली वाली मुझे क्या पता। तो ऐसा कभी नहीं करना है, आपके दवाइयां सारा लेके आके दिखाना है। क्यों बता रहा हूं, क्योंकि हम लिखते हैं कोई दवाई, वो मेडिसिन स्टोर वाला कुछ गलत दवाई देता है, आप गलत खाते हो, नुकसान किसको होगा। कभी कभी मैं डायबिटीज की मेडिसिन लिखता हूं, कोई फोड़े हो गया, कुछ हो गया, एंटीबायोटिक भी लिखता हूं, तो लोग डायबिटीज की मेडिसिन तो बंद कर देते हैं, वो एंटीबायोटिक को डायबिटीज की दवाई सोच के सालों तक खाते रहते हैं, सालों तक। तो इसलिए कब दिखाना जरूरी है, आप क्या दवाई खाते हो, हरी वाली पीली वाली नहीं, ला के दिखाओ क्या खाते हो, कब खाते हो, कैसे खाते हो, तो ही आपको बताऊंगे कि कैसे खाते हो, उसमें आपका ही भला होगा। आपको कोई भी प्रकार के आंखों में सूजन आया, देखने में धुंधलापन आया, कोई ऐसे रिंग जैसा दिख रहा है, काले काले कुछ स्पॉट दिख रहा है, तुरंत आंखों के डॉक्टर को जाके दिखाओ, नहीं तो सडन अंधे हो सकते हो। कभी भी चलाइए नहीं, आपके अगर मुंह सूजा हुआ रहता है, पांव सूजा हुआ रहता है, पेशाब में झाग आ रहा है, बार बार पेशाब जा रहा है, जरूर कहीं ना कहीं गड़बड़ है। आपको कमर में दर्द हो रहा है, एकदम ठंडी लग के बुखार हो रहा है, तो जरूर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है, आगे ऊपर गया किडनी तक पहुंचा तो किडनी फेल हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा चेक करना जरूरी है। न्यूरोपैथी होता है, पांव में सुनापन है, जलन है, तकलीफ हो रहा है, चेक कराइए, बताइए, ट्रीटमेंट कराइए। अगर छाती में दर्द हो रहा है, सांस फूल रहा है, रात को सो नहीं पा रहे हैं, चेक कराइए, हार्ट में प्रॉब्लम हो सकता है। अगर कहीं एकदम अंधेरा लग रहा है, कभी एकदम चक्कर आ रहा है, ब्लैकआउट हो रहा है, आपके ब्रेन पर असर हो सकता है, चेक कराइए, चलाइए नहीं। कहीं भी अगर इन्फेक्शन हो गया दांत में, कहीं भी किधर भी फोड़े हो रहे हैं, कुछ हो रहे हैं, जरूर चेक कराइए, अगर ज्यादा हो जाता है तो प्रॉब्लम होगा। कभी भी एकदम बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन हो जाता है, एसिडोसिस हो जाता है, कोई बेहोश हो जाता है, ऐसे सिचुएशन में तुरंत हॉस्पिटल में दाखिल होकर ट्रीटमेंट करना है, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होगा। हाइपोग्लाइसिमिया हो गया, बहुत ज्यादा शुगर बढ़ गया, बड़ा डेंजरस है। तो इसलिए ये सबको चलाइए नहीं, चेक कराइए अच्छी तरह से, तो ही ठीक होगा। एक आपके लिए लास्ट में, अंत में एक टेक होम मैसेज है, टेक होम मैसेज। आप ये सारा जो सुने इतने दिन तक, दो दिन ढाई दिन में जो भी सारे क्लासेस सुने, उसका सार क्या है, मैं आपको संदेश सुनाने आया हूं। वो सार है, आजकल का जमाना है इन्वेस्टमेंट करने का जमाना। लोग इन्वेस्ट करते हैं और एक बड़ा रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं, है ना? नहीं, कई प्रकार की कंपनीज है, कहते हैं इंस्टॉलमेंट डालो, मंथली इंस्टॉलमेंट इतना, एनुअली इतना, तो आपको पांच साल में इतना मिलेगा, वो मिलेगा, ऑफर करते हैं। तो लोग सब इन्वेस्ट करते हैं, आप करते होंगे ना, कहीं ना कहीं तो करते होंगे कहीं ना कहीं। तो देखिए मैं क्या कहता हूं, पे ए विजिट टू डायबिटिक क्लिनिक एवरी सिक्स मंथ, छह महीने में एक बार हमारे डायबिटिक क्लिनिक विजिट कीजिए, आपका पेमेंट वो है। पे ए विजिट, कोई पैसा नहीं मांग रहे आपको, पे ए विजिट टू द डायबिटिक क्लिनिक एवरी सिक्स मंथ एंड सेव थाउजेंड्स। एक विजिट सिर्फ डायबिटीज क्लिनिक को छह महीने में देंगे तो आपको हजारों रुपया बचत होगा। कैसे? पहले से ही अब हम पता चल गया आपके कहां असर हो रहा है, मैं दवाई लिख के दूंगा, दस रुपया मेडिसिन में ठीक हो सकता है। अगर नहीं चेक किया, साल के बाद आएंगे, उस समय हजारों रुपया का खर्च होगा, तो जाके ठीक होगा नहीं होगा कोई भरोसा नहीं। इसलिए आप छह महीने में एक बार अपना हेल्थ चेकअप कराएंगे तो हजारों रुपया बचत होगी। लेकिन आप अगर हर महीना अगर विजिट करेंगे तो, हर महीना विजिट करेंगे तो क्या होगा, क्या होगा, यू विल सेव मिलियंस। अगर हर महीना आके हमारे आपके चेकअप कराएंगे, हेल्थ चेकअप, आपको कभी कोई कॉम्प्लिकेशंस होगा नहीं, आपको गारंटी देंगे। एक बार आंखें खराब हो गए, एक बार गुर्दे खराब हो गए, लाखों रुपया जाता है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि पे ए विजिट टू डायबिटिक क्लिनिक एवरी सिक्स मंथ, सेव थाउजेंड्स। पे ए क्लिनिक टू डायबिटीज, पे विजिट टू डायबिटीज क्लिनिक एवरी मंथ एंड सेव मिलियंस। फिर मिलेंगे, आपकी इच्छा, हर महीने आते हैं, हर तीन महीने आते हैं, छह महीने में आते हैं कि एक साल में आते हैं, तो सी यू, थैंक यू वेरी मच। अभी आप सबके लिए फिर से एक टेस्ट पेपर होगा, आपको कितना ये